ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत देशभर में प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए कुल 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत गांवों की आबादी 5000 और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2000 से अधिक होनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक जिले के सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले विजेता गांवों को 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान मिलेगा। इस वर्ष फरवरी में सरकार ने सौर छत क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय परिवारों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना को स्वीकृति दी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हथकरघा और हस्तशिल्प की घरेलू बिक्री और निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की जा रही हैं। नई दिल्ली में हैंडलूम एक्सपो का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि हथकरघा कारीगरों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वे नए डिजाइन पेश कर सकें। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र में 35 लाख से अधिक परिवार काम कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत उन्होंने कारीगरों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए और सभी से इस अभियान में भाग लेने की अपील की। बिहार में जहानाबाद जिले के बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में आज तड़के भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि रात करीब 1 बजे स्थानीय विक्रेताओं और श्रद्धालुओं के बीच किसी मुद्दे पर विवाद के बाद भगदड़ की घटना हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धालुओं की मौत पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रूपये की मदद देने की घोषणा की है। बांग्लादेश में 1 सप्ताह तक कार्य बहिष्कार के बाद पुलिसकर्मियों ने आज काम पर लौटना शुरू कर दिया है। आवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में कई पुलिस स्टेशनों पर हमले हुए। तब से पुलिसकर्मी सुरक्षा चिंताओं के कारण काम पर नहीं आ रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सेवानिवृत्त एम सकावत हुसैन के साथ बैठक के बाद हड़ताल वापस ले ली। बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों की 11 मांगों में से कई को अल्पावधि में पूरा करने का आश्वासन दिया गया, जबकि अन्य मांगों पर कुछ समय बाद विचार किया जाएगा। ये निर्णय लिया गया कि अब पुलिस अधिकारियों पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा से भेंट की। उन्होंने द्विपक्षीय मामलों और सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मिश्री ने नेपाल के विदेश सचिव सेवा लम्सल से भी मुलाकात की। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यागत संबंध हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत हुआ है। भारत सरकार की सहायता से नेपाल में प्रमुख बुनियादी ढांचे और संपर्क परियोजनाएं पूरी हुई हैं और नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने 2024 से 2029 की अवधि के दौरान मालदीव के 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के क्षमता निर्माण से संबंधित समझौता ज्ञापन का नवीकरण किया है। ये साझेदारी सार्वजनिक नीति, शासन और प्रशासन में मालदीव के सिविल सेवकों की क्षमताओं को बढ़ाएगी। इससे भारत और मालदीव के बीच संबंध और मजबूत होंगे। पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के कारण रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल जारी है। इस बीच दिल्ली के एम्स ने कहा है कि आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं। सामान्य स्थिति बहाल होने तक ओपीडी सेवाएं काम करेंगी। केवल उन रोगियों को सुबह की ओपीडी में पंजीकृत किया जाएगा जिन्होंने पहले ही अपॉइंटमेंट ले रखा है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने भी आकस्मिक योजना बनाई है। दिल्ली के जो अस्पताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं उनमें सफदरजंग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।